हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अरमान ठाकुर ने भारत वापस जाने का फैसला किया था, क्योंकि वहाँ की सरकार ने उसे केवल 15 दिन का वीज़ा दिया था। समय पूरा होने वाला था, इसलिए अरमान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किए बिना वापस जाने का निर्णय लिया था। अकरम से बात करने के बाद अरमान जान चुका था कि ज़ोया उसे अगले 6 महीने तक नहीं मिल पाएगी। इसलिए अरमान ठाकुर सीधे अरहम के पास गया और उसने उसे पूरी बात बता दी। अरहम बहुत ध्यान से अपने भाई की बात सुन रहा था। तब उसने कहा, भाई, आपने एसआई साहब को धमकी दी है। आप जानते भी हैं, अगर उसने इसका जिक्र अबीर सिंह राठौर से कर दिया तो क्या हो सकता है। तब अरमान हंसते हुए बोला, मेरे भाई, तुम्हें तो अपने सौतेले भाई से कुछ ज्यादा ही डर लगता है। क्यों डरते हो उससे इतना? शायद तुम भूल रहे हो, तुम अरमान ठाकुर के भाई हो और तुम्हें किसी से डरने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? तब अरहम बोला, नहीं भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं जानता हूँ आप ज़ोया से बेहद मोहब्बत करते हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़ोया आपको सही सलामत मिल जाए। लेकिन इस वक्त ज़ोया किसी आम इंसान के पास नहीं है। मैं आपको शुरू से यही बात समझाता आया हूँ। ज़ोया अबीर सिंह राठौर के पास है और अबीर सिंह राठौर से लड़ना इतना आसान नहीं है। अगर उसने कहा है कि अगले 6 महीने तक वो ज़ोया को छुपाकर रखेगा, तो मतलब वो छुपाकर रखेगा। हमें अपनी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए और अगले 6 महीने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अबीर सिंह राठौर की इस देश में ही नहीं, विदेशों में भी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है कि हम लोग चाहकर भी ज़ोया को नहीं ढूंढ पाएंगे। तब अरमान बोला, मैं भी तुम्हें यही कह रहा हूँ। हम अब 6 महीने तक ज़ोया को नहीं ढूंढेंगे और इंतज़ार करेंगे कि अबीर सिंह राठौड़ उसे कब छोड़ता है। हो सकता है अबीर सिंह राठौड़ को ज़ोया का जिस्म पसंद आ गया हो और अगले 6 महीनों तक वो उसके साथ शारीरिक संबंध रखना चाहता हो। और सीधी सी बात है, इतना अमीर आदमी एक लड़की को कब तक अपने साथ रख सकता है? तब अरमान बड़ी ही बेशर्मी से बोला, मुझे पूरा यकीन है इन 6 महीनों में जब अबीर सिंह राठौड़ का दिल ज़ोया के जिस्म से भर जाएगा तो वो उसे छोड़ देगा। उसके बाद उसका सहारा अरमान ठाकुर देगा। ऐसा कहकर अरमान हंसने लगा और हंसते हंसते एकदम से सीधा चेहरा बनाकर अरहम के सामने जाकर बोला, लेकिन अबीर सिंह राठौड़ का ज़ोया को छूना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तुम देखना, एक ना एक दिन अबीर सिंह राठौड़ को उसके किए की सजा दूंगा। अरमान और अरहम अब जो भी उनके दिमाग में आ रहा था वो कह रहे थे और अरहम कहीं न कहीं इस बात को मान चुका था। अरहम ठाकुर को भी यही लग रहा था कि अगर अबीर सिंह राठौर ने ज़ोया को 6 महीने के लिए अपने पास रखा हुआ है तो ज़रूर उसे उसके जिस्म का लालच होगा और 6 महीने में जब उसका दिल भर जाएगा वो उसे छोड़ देगा। दोनों भाइयों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना अनुमान लगा लिया था। तभी अरहम ने अपने भाई का हाथ पकड़कर कहा, आप फ़िक्र मत कीजिए भाई, मैं यहाँ 6 महीने तक और रहूँगा और इंतज़ार करूँगा कि अबीर सिंह राठौड़ कब ज़ोया को छोड़ता है और तब तक अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा उसका पता लगाने की। और रही बात अकरम और रिया की, तो वो अब मेरे शिकार हैं और उन्हें किस तरह से डील करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा कहकर अरहम ने अपने मुँह पर हाथ फेरना शुरू किया। अरमान एक तिरछी नज़र से अपने भाई को देख रहा था। वो समझ चुका था कि उसका भाई एक बार फिर से बदल चुका था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौड़ ज़ोया का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। वो उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देना चाहता था। जब अबीर को लगा कि ज़ोया अब बिल्कुल ठीक है, उसने कुछ कागज़ ज़ोया को थमा दिए। वो कागज़ पढ़ते ही ज़ोया के चेहरे पर कई भाव आ गए। ज़ोया, ये सब क्या है? अबीर राठौड़, ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स IIM में MBA के लिए है। अबीर, तुम्हें केवल 1 महीने तक ये क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि मैं इंडिया में जो कंपनी शुरू की है उस कंपनी को टेक ओवर तुम करोगी। तुम होगी उसकी मालकिन और उस कंपनी का टर्नओवर 2500 करोड़ रुपए होगा। जैसे ही ज़ोया ने ये सुना, उसकी हालत खराब होती जा रही थी और वो सवालिया नज़रों से अबीर सिंह राठौर की ओर देखने लगी थी। अबीर, क्या देख रही हो? जो भी तुम देखो और सुन रही हो वो बिल्कुल सच है। कल से तुम्हें ये क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी। ज़ोया कुछ कहना चाहती थी लेकिन अबीर ने उसे रोक दिया और बोला, शायद तुम ये नहीं जानती कि जिस कॉलेज में तुम्हारी क्लासेस होंगी उस कॉलेज में एक लेक्चर मैं भी दिया करूँगा। सच में किसी भी तरह की तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अबीर तो मानो अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था। जोया, लेकिन मैं ये सब सीख कर क्या करूँगी? मुझे क्या जरूरत है इन सब की? अबीर सिंह राठौड़, मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी बिजनेस वूमन हो। कोई भी तुम्हारी टक्कर का ना हो, समझी तुम? और कल से तुम्हें ये कोर्स करना ही होगा। और मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है कि कल ठीक 9 बजे तुम्हारी क्लासेस शुरू होंगी। अबीर जोया को एक एक बात बहुत ही ध्यान से समझा रहा था। वो चाहता था कि जोया जल्द से जल्द बिजनेस की सारी स्किल सीख ले, इसीलिए उसने फास्ट क्लासेस में उसका एडमिशन कराया था। जोया कभी उन कागजों को देखती तो कभी अबीर सिंह राठौड़ को देखती। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अबीर क्या कर रहा है। लेकिन अबीर तो जोया को हैरान परेशान छोड़कर अपने कमरे में चला गया था। अपने कमरे में आकर अबीर इधर उधर टहलने लगा था और सोच रहा था, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तुम्हें मजबूत होना होगा। इतना मजबूत कि तुम्हारे दुश्मन ना तो दिमागी तौर पर हरा पाएं और ना ही जिस्मानी तौर पर। आगे आगे देखो, ये अबीर सिंह राठौड़ अपनी बीवी जोया को कहां से कहां तक पहुंचाता है। ऐसा कहकर अबीर सिंह राठौड़ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। ऐसा लग रहा था अबीर का पहला कदम जोया के लिए सफल हो चुका था। वहीं आर्मी हॉस्पिटल से राजवीर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब वो पहले की तरह काफी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन कुछ दवाइयों की वजह से उसके जिस्म में काफी कमजोरी आ चुकी थी। उन कमजोरियों को दूर करने के लिए राजवीर सिंघानिया ने एक तरीका अपनाया था। उसने अरमान और अरहम ठाकुर की फोटोएं अपने सामने रखी थीं और दिन रात उन फोटोओं को देखकर वो अपनी सेहत बनाने लगा था। उसने व्यायाम करना शुरू कर दिया था। वो अपने अंदर की कमजोरी को जल्द से जल्द दूर करके उन लोगों से बदला लेना चाहता था। उसके अंकल शमशेर सिंह ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि राजवीर ये सब कुछ क्यों कर रहा है। आखिरकार वो राजवीर को बचपन से जानते थे। राजवीर किस वक्त क्या कर सकता था, इस बात का उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा था। राजवीर का मन तो सीधा मेहर को गोली मारने का कर रहा था, लेकिन उसने सोचा था कि ये उन लोगों के लिए बहुत आसान मौत होगी। राजवीर ने डिसाइड कर लिया था कि वो मेहर को ऐसी मौत देगा कि वो मौत की भीख मांगेगी। उसमें राजवीर के अंदर बहुत नफरत भर चुकी थी। अब उसकी जिंदगी का मकसद था ठाकुर खानदान को बर्बाद करना। लेकिन अब ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि ठाकुर खानदान की बेटी मेहर ने अपने दिमाग और जिस्म की बदौलत अरमान ठाकुर की कंपनी को बहुत ऊंचा उठा दिया था। इतना ऊंचा कि अब उसकी कंपनी भारत देश की नंबर 1 कंपनियों में से एक बन चुकी थी।
अरमान की कंपनी के सामने किसी भी कंपनी का टिक पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। सारे प्रोजेक्ट, सारी डील्स सिर्फ और सिर्फ मेहर के जरिए अरमान की कंपनी को मिल रही थीं। कुछ ही दिनों में अरमान की कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया था। मेहर ने अपने दम पर न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहरी देशों में भी अरमान की कंपनी के पैर बहुत अच्छी तरह से जमा दिए थे। अब अरमान जब वापस आने वाला था, अब देखते हैं अरमान ये सब देखकर कैसा रिएक्ट करता है। राजवीर भले ही अस्पताल में पड़ा हुआ था, लेकिन वो मेहर और उसके द्वारा किए गए हर काम की पूरी डिटेल्स अपने पास रख रहा था। राजवीर जानता था कि वो मेहर को किस तरह से हराएगा, क्योंकि राजवीर ने अपना 50% पैसा अरमान की कंपनी में लगाया था, लेकिन मेहर ने बड़ी ही चालाकी से वो भी अपने नाम करवा लिया था। राजवीर की बीवी होने का उसने पूरी तरह से फायदा उठाया था। मेहर के पास अब एकदम शातिर और तेज दिमाग था, लेकिन तेजी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया था, क्योंकि तेज उसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा। राजवीर को ये बात भी पता चल चुकी थी कि मेहर ने अपने ही घर के बॉडीगार्ड, जो कि बरसों से अरमान ठाकुर का वफादार था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे। राजवीर ने कहा था, बहुत शौक है ना तुम्हें मर्दों की जिंदगी से खेलने का, अब देखा राजवीर सिंघानिया तुम्हारे साथ क्या करता है। मेहर, राजवीर ने बड़ी ही नफरत से मेहर का नाम लिया था। उसने सोच लिया था कि वो मेहर को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा, अब जल्द से जल्द जोया को ढूंढकर अपनी जिंदगी में वापस लाएगा और अपने किए की उससे माफी मांगेगा, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथों से जाने नहीं देगा। इसलिए बार बार राजवीर के मन में ये ख्याल आते जा रहा था कि जोया कहाँ है, काश जोया उसकी जिंदगी में वापस आ जाए तो वो इन लोगों को चुन चुन कर सजा देगा। राजवीर सिंघानिया ने सोच लिया था कि उसे बिजनेस में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अरमान को हराने के लिए वो अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट करेगा और अरमान के सामने अपनी नई कंपनी शुरू करेगा। और राजवीर सिंघानिया ने जोया को ढूंढने के लिए अपने अंकल शमशेर की मदद मांग ली थी। उसने कहा था कि उसे जोया हर कीमत पर चाहिए। शमशेर सिंह अच्छी तरह से जानते थे कि राजवीर के पास कितनी धन दौलत है और उसके बलबूते पर वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए उन्होंने राजवीर के कहने पर जोया को ढूंढने के लिए अमेरिका में अपने कुछ साथियों को भेज दिया था, क्योंकि राजवीर को बहुत अच्छी तरह से पता था कि जोया अब अमेरिका में है। राजवीर के अंदर जोया के लिए एक बार फिर से तीव्र भावनाएं जाग चुकी थीं, क्योंकि उसे अब जोया की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। कुल मिलाकर जोया के एक साथ तीन आशिक इकट्ठे हो चुके थे।